ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮುಹೂರ್ತ, ಯಜ್ಞ ಕೆ ಪಿಲರ್ಸ್ ಕೆ ಸಮಾನ ವರಿಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾ ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಯ್ ಜಿ, ಬಾಪ ದಾದಾ ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತನ್, ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಏಕ ಹಾತ್ ಕಿ ತಾಲಿ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರೆಂಗೆ ಭ್ರಾತಾ ಜಿ ಆಪ್ಕಾ ಇಸ್ ಸಭಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ತಹ ದಿಲ್ ಸೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ಜಿ, ಆಪ್ನೆ ಶುರು ಸೆ ಹಿ ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಜಗದಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ಔರ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ದೋನೋ ಕೆ ಅಂಗ ಸಂಗ ರಹಕರ್ ಕೆ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ, ಜೊ ಆಪ್ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾವೋ ಕೋ ವೋ ಅನುಭವ ಕರಾತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ಶುರೂ ಶುರೂ ಮೇ ಆಪ್ನೆ ಪಂಜಾಬ, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ, ಅಮೃತಸರ್, ಆಪ್ ಜೋನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸೇವಾ ದೇ ಚುಕೆ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಮೇ ಆಪ್ 1973 ಸೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲೀನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈ. ದಿಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಜೋನ್ ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಹೈ. ಆಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ಕಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆ ಆಪ್ ಎಡಿಟರ್ ಹೈ. ಆಪ್ 8 ಭಾಷಾ ಮೇ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ರಾಜ್ಯೋ ಕೊರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆ ಲೇಖಕ ಬಿ ಆಪ್ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೈ, ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ಕೆ ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೋ ಕೆ ಬಿ ಲೇಖಕ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಹೈ. ಆಪ್ ಭಾರತ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಪಾರ್ ಅನೇಕ ದೇಶೋ ಕಾ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಕಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾವೋ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾಯ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಿ ದುಆಯೇ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಆಪ್ ರಹ ಚುಕೆ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ನೇಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೋ ಬಿ ಸಂಬೋಧಿತ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. 1981 ಮೇ ಆಪ್ ನೈರೋಬಿ ಕೆನ್ಯಾ ಕಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ವಕ್ತಾ ಬಿ ಆಪ್ ರಹ ಚುಕೆ ಹೈ. ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿ ಬಜಾಯೆಂಗೆ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಆಪ್ನೆ ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಕೆ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್, ಗುಯಾನಾ ಔರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ 1985 ಮೇ ಕಿ ಹೈ, ಜಬ್ಕಿ ಯುಎಸ್ಎ ಮೇ ಆಪ್ನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಪೀಸ್ ಮೈನುಟಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ ಭಾರತ ಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಭೀ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ನೇ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ದ್ವಾರಾ ಆಯೋಜಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಾ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಟಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಪೀಲ್ ಏಕತ್ರಿತ ಭೀ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ನೇ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಐಸೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ವಿಶೇಷ ರತನ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಅಭಿ ಜ್ಞಾನ ರತನ್ ಸೆ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಿ ಝೋಲಿ ಕೋ ಭರೆಂಗೆ. ಆಜ್ ಕೆ ಆಪ್ಕಾ ವಿಷಯ ಹೈ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಕಾ ಚಮತ್ಕಾರ. ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಯ್ ಜಿ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕೆ ಇಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಶಾಂತಿ ವನ್ ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲ್ ಮೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾ ಕೆ ಏಕ ದಿನ ಪೆಹಲೆ ಶಾಮ ಕೋ ಮೇ ಕೈ ವರ್ಷೋ ಸೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಾ ರಹಾ ಹೂ. ಮೇರಾ ಯೇ ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೈ, ಕಿಂತು ಜಿತನಿ ಭರಿ ಹುಯಿ ಸಭಾ ಮೇನೆ ಆಜ್ ದೇಖಿ ಹೈ ಉತನಿ ಕಭಿ ನಹೀ ದೇಖಿ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಅಪ್ನೆ ಲಿಯೆ ತಾಲಿ ಬಜಾಯೆ. ಇಸ್ಕಾ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಇಸ್ಕಾ ಕಾರಣ ಯೇ ಹೈ कि आप सौभाग्यशाली आत्माओं ने गुजरात में जन्म लिया है संगम पर, और गुजरात जो है माउंट आबू का नेक्स्ट डोर है, और यहाँ के भाई बहन शुरू से लेकर यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते रहे हैं, और जितने भी यज्ञ की पूर्ति है वो करते रहे हैं, और आज तक भी आप देखेंगे कृष्ण के भगत सबसे ज्यादा गुजरात में हैं, और डांडिया नृत्य भी जिसको कहते हैं रास मिलाकर करना, वो भी गुजरात में होता है। इसलिए वो आत्माओं के अंदर जो बाबा का आपने पालना लिया, सहयोग दिया, उसके संस्कार आज तक भी हैं, इसीलिए हम ऐसा दृश्य देख रहे हैं। एक बार फिर गुजरात के लिए ताली बजाओ। ना केवल संगम में, ना केवल स्वर्ग में, बल्कि भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो किसने बनवाया? शिव बाबा कहता है कि सबसे पहली यादगार भगवान की, निराकार की आपने बनाई। उसके बाद श्री कृष्ण के मंदिर सबसे ज्यादा भारत में है, हमने विदेशों में भी जाकर देखा है। गुजरात के भाई बहन कहाँ भी हों पर वो अपनी भारतीय कल्चर को कायम रखते हैं, जितने हमारे देश के त्यौहार हैं वो मनाते हैं, और कलयुग में भी अगर आप आकर के देखेंगे तो बाबा दो बापू जी कहता है, एक भारत का बापू जी और एक विश्व का बापू जी। परंतु भारत को भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता किसने दिलाई? भारत के बापू जी ने, और वो कौन थे? वो भी गुजरात के थे। उसके बाद आप देखो सरदार पटेल, जिसने सारे भारत को टूटे हुए को इकट्ठा किया, और लंबी चौड़ी हिस्ट्री में ना जाकर आज भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी देखो फिर से वो किया है। समझिए कि ब्रह्मा बाबा का ही काम कर रहे हैं। शायद वो ब्रह्मा कुमार होते तो लोग समझते ही तो कोई ब्रह्मा कुमार है, पर काम तो ब्रह्मा बाबा का ही कर रहे हैं, सारी विश्व को एक कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए गुजरात के भाई बहनों को विशेष मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अब आप देखिए कि हम सबको, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ी एक चीज कौन सी मिली जिससे बाकी सब प्राप्तियां हो गई, वो कौन सी चीज है? आप सब जानते हैं, प्यारी से प्यारी वस्तु कौन सी है? वो है मेरा बाबा। ठीक है, मेरा बाबा मिला तो और आपे ही मिल गया। ठीक है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम अपने प्यारे बाबा को याद करके अपनी खुशी प्रकट करेंगे। तो जैसे दादी जी कहते हैं, सबको क्या कहना है? मेरा बाबा बोलिए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और शुक्रिया बाबा, क्योंकि आपका थैंक्स है जो आपने हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो हमारे बाबा के तो बहुत सारे टाइटल हैं, बाबा ने हमें भी बहुत सारे टाइटल दिए हैं, हमारे भी टाइटलों की पूरी पुस्तक बन सकती है। बाबा के टाइटल तो आज तक लोग गा रहे हैं, पर आज के विषय के लिए क्या टाइटल होगा बाबा का? चमत्कारी बाबा। ठीक है, तो हमारा बाबा कौन है? चमत्कारी बाबा, क्योंकि ज्ञान सूर्य के चमत्कार। तो अब आप देखिए क्या क्या चमत्कार बाबा ने किए हैं और हमको भी चमत्कारी बना दिया। दुनिया के लोग बेचारे किसको चमत्कार समझते हैं? वो समझते हैं कि यदि कोई बच्चा दो सिर वाला पैदा हो जाए कहीं, तो सारे लोग उसको देखने चले जाते हैं कि चमत्कार हो गया, हा? या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अजीब गरीब चीज हो जाए तो कहते चमत्कार हो गया। और उन्होंने अपनी द्वापर युग की रजोगुनी बुद्धि से क्या चमत्कार बताया कि सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी कि परमात्मा कोई चमत्कार दिखाता है। वो चमत्कार क्या दिखाया कि श्री कृष्ण जी थे, उनका जन्म हुआ तो ताले खुल गए जेल के, पहरेदार सो गए और उनको लेकर उनके पिताजी चले गए। आगे जमुना बहुत चढ़ी हुई थी, बहुत उसमें पानी आया हुआ था, तो ऊपर से बारिश हो रही थी, एक पांच सिर वाले सांप ने श्री कृष्ण जी की छतरी बन गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसको वो पहला चमत्कार कहते हैं। और उसी में पहली भूल में आज तक, क्योंकि हम चमत्कार का उन्होंने अर्थ ही नहीं समझा, तो हम बच्चों को बाबा ने बताया है कि मेरे चमत्कार, मैं सारे विश्व का पिता हूं तो मेरे चमत्कार भी सारे विश्व के लिए हैं। अभी हमने गीत सुना कि सबसे ज्यादा चमत्कारी चीज क्या है, बाबा की मुरली, ठीक है? क्यों कि दुनिया में आज तक भी किसी को पता नहीं है उसका पिछला जन्म कहां हुआ था, अगला जन्म कहां होगा, ये सृष्टि कैसे शुरू हुई, कब तक चलनी है, कुछ पता नहीं है। कोई भी बात सुन लो जो हम सब जन्म जन्मांतर सुनते हैं उल्टी है। तो बाबा कहते हैं मेरा पहला चमत्कार मुरली के द्वारा क्या किया कि बाबा ने आकर हमें, जो हम तीन बारी ओम शांति कहते हैं, पहले पहले हमें तीन परिचय दिए। क्या दिए? मैं कौन हूं, ठीक है, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा घर कहां है, मेरा पिता कौन है आत्मा के तौर से, और मैं आत्मा हूं। तो ये परिचय बाबा ने हमें दिया। और सबसे पहला चमत्कार यही हुआ कि हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले से बदलकर अमर हो गए, है ना? हम भक्ति में क्या कहते थे, हे भगवान हमें मृत्यु से अमर बना दो। बाबा कहते हैं मैंने एक ज्ञान सुनाकर के तुम आत्मा हो तुमको अमर बना दिया और भाई भाई बना दिया। नहीं तो हम समझते थे मैं गुजराती हूं, मैं गुजरात में भी काठियावाड़ी हूं या फलाना हूं, फिर मैं इंडियन हूं, फिर मैं ये हूं, फिर मैं वो हूं। बाबा ने कहा तुम हो आत्मा और सारी दुनिया की आत्माएं भाई भाई हैं। तो क्या हुआ, एक तो प्रेम बढ़ गया, एक इतना बड़ा आत्मिक परिवार हो गया, इतना बड़ा विश्व परिवार हो गया, जो वो लोग सिर्फ कहते आते हैं विश्व परिवार विश्व बंधु। तो ये बाबा का दूसरा चमत्कार हो गया। किसी को अपने घर का पता नहीं कहां से आए हैं, किसी से जाके देख लो, कोई कहेगा ब्रह्म से निकले हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, कोई कहता है पशु कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। बाबा ने हमको आके एग्जैक्ट बता दिया कि आप आत्माएं परम धाम की निवासी हो, फिर कैसे यहां आती हो, सारा चक्कर भी बता दिया, मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया। तो सारा मुरली से हुआ ना, इसलिए बाबा की मुरली ही चमत्कारी है। तो हमको अब पता लगा कि परमात्मा का चमत्कार ऐसे नहीं कोई मुर्दे को जिंदा कर दे, किसी बीमार को ठीक कर दे। जब हम बच्चे थे तो कोई कुत्ता मरे ना तो हमारी माँ भेज देती थी जाके उसको गीता सुनाओ उसके प्राण निकल जाएंगे, इसी को चमत्कार समझते थे। इसलिए हम सब बहुत 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 सबसे ज्यादा भाग्यशाली यही हैं कि हमने पूर्व जन्मों के अपने पाठ के अनुसार बाबा ने हमको आकर के अपना परिचय दिया, अपना बनाया और हमको भी मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर ज्ञान सूर्य बना दिया। तो इसलिए बाबा ने अपने चमत्कार जो हमें दिखाए वो हमें आगे जाके दूसरों को दिखाने हैं, क्योंकि बाबा करण करावनहार है, हमें क्यों दिखाने हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। अगर मैं ही सबको दिखा दूं तो फिर क्या होगा? फिर तो बाबा को आके सतयुग में जन्म लेना पड़े, और बाबा सतयुग में जन्म लेंगे तो बाबा को फिर कलयुग में भी आना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं मैं एक ही हूं जो युक्ति करके आता हूं। कुछ काम तो मैं ऊपर से ही कर देता हूं। कई कहते हैं भगवान ऊपर से क्यों नहीं कर देता, बात तो उनकी ठीक है, पर वो कहते हैं कि शंकर का पाठ मैं ऊपर से बजवाता हूं, विष्णु का पाठ मैं ऊपर से बजवाता हूं, ब्रह्मा का भी बहुत समय ऊपर से बजवाता हूं, लेकिन जितना जरूरी है कि यहां आत्माएं थोड़ा समझना शुरू करें उतना समय मैं युक्ति करके नीचे आके अवतरित होकर दूसरे तन में प्रवेश करके अपने मुख के वंशावली बनाता हूं। तो हम सब कौन हैं? बाबा का चमत्कार यह है कि कलयुगी शूद्र वृत्ति आत्माओं को बाबा ने सीधा ही जंप लगवाकर क्या बना दिया? कलयुगी शूद्र वृत्ति आत्माओं को ज्ञान देकर क्या बना दिया, क्या परिचय दिया कि तुम ब्राह्मण हो? हैं? अभी भी बाबा ने कहा है कि क्रिश्चियन धर्म में ब्राह्मण आदि नहीं होते, इस्लाम धर्म में ब्राह्मण नहीं होते, पारसी धर्म में, पर अपने धर्म में बाबा ने हमको कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? आजकल बहुत सारी चर्चा हो रही है धर्म परिवर्तन की, हो रही है ना दुनिया के अंदर, हम तो भारतवासी हैं। तो सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसने किया? हम लोग, जिसको बाबा ने ब्राह्मण बनाया, फिर बाबा ने हमको देवता बनाया, फिर हम अपने आप क्षत्रिय बन गए। बाबा की सारी प्रारब्ध खत्म करने के बाद जैसे कोई होता है ना लोभ में आके लोग धर्म चेंज कर लेते हैं, तो हमने रावण के धोखे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया, हम हिंदू बन गए। बताओ सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किसने किया? शुरू हमने किया। और बाबा कहते हैं अब भी घर वापसी, आजकल घर वापसी बड़ा शब्द चलना पड़ा है, घर वापसी, वो तो नकली घर वापसी करते हैं, परंतु सच्ची घर वापसी कौन कर रहा है? बोलो, सच्ची घर वापसी कौन करवा रहा है? शिव बाबा। और किससे करवा रहा है? हमसे। हमारा स्लोगन क्या है? अब घर, क्या स्लोगन है? अब घर जाना है। हम तो अपनी मर्जी से जाएंगे, बाबा के चमत्कारों का लाभ लेके जाएंगे, जो नहीं भी तैयार उनको भी अब घर जाना है, शूद्र कोई नहीं रहेगा। इसलिए ताली बजाओ कि हमारा चमत्कारी बाबा जब आता है उसके बाद क्या होता है कि नाम ही है सूर्य, तो सूर्य का क्या काम है? अंधकार को बदल के प्रकाश करना, रात्रि को बदल के दिन करना। तो ब्रह्मा की रात्रि को बदलकर, ब्रह्मा की रात्रि मैंने हम सब की रात्रि, उसको बदलकर सारे विश्व की रात्रि को नया दिन बनाना, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में ना कोई कर सकता है, ना किसी ने किया है, ना करेगा। तो हमारा बाबा हुआ कि नहीं चमत्कारी, और हम उसके साथ हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य का चमत्कार सारे विश्व के लिए है और ब्राह्मणों के लिए विशेष है, क्योंकि तो बाबा कहता है कि मैं, आप कौन हैं? आप साधारण नहीं हैं, हम सब दुनिया में साधारण हैं, क्योंकि जो आज की दुनिया में बड़े हैं वो सतयुग में थे ही नहीं, और जो सतयुग में थे वो अपनी आज चौथी स्टेज पर हैं, परंतु बाबा के बच्चे बनने से एकदम हम क्या हो गए, एकदम हम हो गए क्या, कांटे से फूल। एक दो दिन पहले बाबा ने कहा है कि रावण को कांटों से क्यों जलाते हैं और भगवान पर फूल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि रावण ने कांटों का जंगल बनाया और बाबा ने हमको फूलों का बगीचा बना के दिया। अब हम क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं और फूलों की दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा का ये चमत्कार है, दुनिया में आपने फूलों को कांटे बनते तो देखा होगा, लेकिन कांटों को फूल बनते नहीं देखा होगा। तो बाबा आके कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, अपने एक एक बच्चे को दुखदाई जो चीजें हैं, विकार हैं, क्रोध है, अहंकार है, उससे छुड़ाकर हर एक को सुखदाई। बाबा कहते हैं आप बोलो तो आपका बोल भी मधुर हो, कोई कर्म करो तो भी किसी को सुख देने वाला हो, देवता हो गए हो रहे हैं। इसलिए बाबा के चमत्कार अनेक हैं, पर हम ब्राह्मणों के लिए क्या खास चमत्कार है। हम ब्राह्मणों के लिए पहला चमत्कार है जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख। आज तक सतयुग में भी देवताओं को भी अति इंद्रिय सुख नहीं था, देखो, क्योंकि संगम युग पर बाबा साथ है। तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से ताली बजाओ। आप सब अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो, और दुनिया में कोई भी सन्यासी उदासी कोई भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकता, इंद्रियों का कर सकता। क्यों कि अति इंद्रिय का सुख आत्मा को होता है, आत्मा अभिमानी को हो सकता है, देह अभिमानी को हो ही नहीं सकता। तो आत्मा अभिमानी बनने का, विदेही बनने का, मैं कौन हूं इसको जानने का पता तो ब्राह्मणों का ही है, इसलिए अति इंद्रियों का सुख। फिर दूसरा ब्राह्मणों के लिए क्या चमत्कार है, इच्छा मात्रम अविद्या। देखो दुनिया में ऐसा कौन होगा सिवाय परमात्मा के जिसको इच्छा ना हो, है? निस्वार्थ कर्म। बाबा कहते मेरा तो शरीर भी नहीं है, मैं कोई कर्म भोग भी नहीं में आता, लेकिन अपने बच्चों की भी बाबा ने, कोई भी बच्चा कहीं भी हो, चाहे छह बच्चे का बाप हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ा हो, बूढ़ा हो, जो कोई फर्क नहीं, बाबा कहता है कि मैंने अपने बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बना दिया, यानी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं किसके खजाने में, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं किसके खजाने में, बोलो, ब्राह्मणों के खजाने में। इसलिए बाबा कहता है ताली बजाओ कि आप इतने बेहद के जबरदस्त बादशाह कि आपके खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, आपको कोई इच्छा ही नहीं, क्यों? अरे जिसको भगवान मिल गया उसकी शरीर का भी सारा ध्यान बाबा रखे, उसके मन को भी बाबा शुद्ध करे, पतित पावन है, उसका भविष्य भी बनाए, उसके पिछले विकर्म भी खत्म करे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। शरीर के लिए लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, धन कमाने के लिए कहीं और जाते हैं, आदि आदि। और जिसका इतना बड़ा परिवार हो, तो जिसका इतना बड़ा परिवार हो, परिवार बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, अरे हमारा इतना बड़ा परिवार आपकी, और ऊपर परमात्मा आपसे पूछे बगैर ही आपकी सब इच्छाएं पूर्ण करता है, आपको अनुभव है कि नहीं? हर एक ब्राह्मण को अनुभव है कि बिना मांगे ही, मांगने वाले को तो बाबा बच्चा कहता ही नहीं, वो तो भगत है, बच्चा कोई मांगता है क्या? बच्चे की माता पिता अपने आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और जिसका माता पिता भगवान हो, सर्वशक्तिवान हो, जिसको हर चीज का सागर हो, आप बताइए आपको इच्छा रह सकती है? है ना, हमारा स्लोगन क्या है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए कौन इच्छा रखेगा। और इच्छाएं तो हद की होती है, हमें तो बेहद की प्राप्ति। बाबा कहता है 21 जन्म के लिए तुम्हारी आयु पूरी, 21 जन्म के लिए कोई रोग शोक नहीं, 21 जन्म के लिए कोई परिवार में झगड़ा नहीं, 21 जन्म के लिए कोई प्रकृति का प्रकोप नहीं, आंधी भी नहीं आती, बे टाइम गर्मी भी नहीं होती सर्दी। तो बताओ इतना बड़ा जो होगा, जो हमें मिल रहा है, उसको इच्छा क्या होगी? ताली बजाओ। अब जी बेहद की खुशी, अति इंद्रिय सुख तो आत्मिक स्थिति है, शरीर में भी आ जाओ तो बेहद की खुशी। दुनिया में किसी को भी बेहद की खुशी नहीं हो सकती, क्यों? बहुत सारे कारण हैं, आप जानते हैं, पिछला हिसाब किताब, आज का समय, बहुत कुछ है। लेकिन मोटी बात यह है कि आपको बेहद की खुशी चाहिए तो उसको रखोगे कहां, बताओ? हद की खुशी तो होगी भी, चलो पैसे की खुशी है, बैंक में रख दिया, मकान की खुशी है, ये पड़ा। बेहद की खुशी मैंने जो हर वक्त ही रहे, आप सो रहे हो तो भी आप हंस रहे हो, हैं? ऐसी खुशी कहां रखोगे? आपको बेहद की खुशी टेम्परेरी चाहिए या परमानेंट? बोलिए, परमानेंट या टेम्परेरी? भगवान के घर आए हैं, परमानेंट। कहां रखोगे? तो आप देखोगे कि आत्मा का ज्ञान सिर्फ बाबा ने हमें दिया है और आत्मा परमानेंट है, तो खुशी भी आत्मा में ही रहती है। उनको तो ये भी नहीं पता, वो समझते पैसे में खुशी रहती है। तो इसलिए परमानेंट खुशी आत्मा को हो सकती है और आत्मा का ज्ञान आपको है और आत्मा अभिमानी आप रहते हैं, वो खुशी यहाँ भी रहेगी, आगे भी साथ चलेगी और कुछ नहीं जाएगा। तो किसके पास हो सकती है बेहद की खुशी, परमानेंट खुशी? सिवाय ब्राह्मणों के पास, किसी के पास ना है ना हो सकती है। इसलिए ताली बजाओ, आपको बेहद की खुशी। अच्छा, आगे चलो। आपने कभी अलादीन के चिराग की कहानी पढ़ी है? सुनिए सुनिए, बाबा भी कभी कभी मुरलियों में अलादीन का चिराग कहता है। अलादीन का चिराग की क्या खासियत थी, क्या खूबी थी? कहते हैं कि अलादीन का चिराग था, उसको जरा सा रगड़ेंगे तो उसमें से एक जिन प्रकट होता था और जिन बहुत अदब से झुक करके कहता था, बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, जो आप कहोगे वो करता था। ठीक है, ये तो है कहानी यादगार, परंतु इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, और वो चिराग बहुत पुराना था। कहानी लंबी है कि एक जादूगर आया, धोखा देके उस व्यक्ति से एक नया, उससे बढ़िया दिखने वाला चिराग दे गया, उसको ले गया पुराने को। अब उसको रगड़े तो कुछ हो गई नहीं नए में से, है ना? इसलिए बाबा हमेशा कहता है अल्लाह दीन का मतलब है अल्लाह अव्वल दीन, कि परमात्मा ने जो पहला धर्म स्थापित किया उसके जो चिराग हैं, तो ये चिराग नहीं, चेतन आत्माएं हैं, उनके पास ये शक्ति है कि कोई भी संकल्प करेंगे तो माया रूपी, जिसको जिन्ह दिखाया है, शक्ति आपकी सर इच्छाएं पूरी करेगी, प्रकृति आपकी दासी होकर रहेगी। तो बताइए, अभी आपको अनुभव होगा कि प्रकृति आपकी दासी कैसे है। कई ब्राह्मण बताते हैं, मैंने ये संकल्प किया मेरा हो गया, मैंने ये सोचा मेरा हो गया, है ना? इसलिए भी ताली बजाइए कि आपके पास, बल्कि आप सब अलादीन के चिराग हैं। अच्छा, आपने मैजिक कारपेट सुनी है? मैजिक कारपेट, मैजिक कारपेट एक जादू की, कहा जाता है एक जादू का गलीचा था। वो आसमान में उड़ता रहता था, उस पर व्यक्ति बैठा रहता था, सारी दुनिया की सैर करता था और वहां भी उसको जो चीज चाहिए मिलती थी। ठीक है, कहानी तो है मैजिक कारपेट की। लेकिन मैजिक कारपेट का अर्थ क्या है? मैजिक कारपेट का अर्थ है उड़ती कला की स्टेज, ठीक है। अब आपके पास, सबके पास मैजिक कारपेट है, आप उड़ती कला में रहो, दुनिया का हालचाल देखो, हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो सड़क का ट्रैफिक उसको तंग नहीं करता, लाल बत्ती तंग नहीं करती, ऊपर से उड़ जाता है हवा में, वो तो स्थूल है, परंतु आपका मन से बड़ा तो कोई रॉकेट है नहीं। और उसकी स्पीड क्या है? आजकल कहते हैं कि नया प्लेन बना रहे हैं जो 4 घंटे में आपको कहीं भी ले जाएगा, अभी वो बेचारे बना रहे हैं, कितने अरबों रुपए का है, परंतु आपके पास तो बाबा ने अंदर ही दे रखा है। जिस मन को पिंजरे में बांध रखा था, है गीत है ना, पिंजरे को पंछी को दिया आकाश आपने, हैं, हम पिंजरे के पंछी बने थे, बाबा ने उड़ा दिया, तो वह जो है मैजिक कारपेट वो सबके पास है। अपने मन का बटन दबाओ और जहां मर्जी सैर करो, और सैर इस दुनिया की नहीं, सिर्फ आप कहां कहां की सैर कर सकते हो। बाबा ने अपने ब्रह्मांड के सारे गेट बच्चों के लिए खोल दिए, देवता भी वहां नहीं जा सकते, आप जा सकते हो क्या है? बाबा कहता आप अपने उस घर में जा सकते हो जिसका किसी को पता ही नहीं, जब आप वहां रहोगे तब भी आपको पता नहीं होगा वो घर में हम बैठे हैं, अब पता है मजेदार बात, वहां आपको नहीं पता होगा मेरे पड़ोस में कौन सी आत्मा बैठी है, यहां पता है। इसलिए बाबा कहता है परम धाम जो मेरा घर है, अरे भगवान के घर की चाबी आपके पास है कि जब मर्जी चले जाओ। अच्छा, फिर दूर से दूर, आप किसी पेट्रोल से किसी रॉकेट से नहीं जा सकते, मन से जा सकते हो। फिर बाबा कहता है हल्के रहने के लिए, दुनिया के लोग हल्का कोई भारी कुली नहीं होता, सिर्फ कुली तो स्थूल वजन उठाता है, आज के सब लोग भारी हैं, आप देख लो, क्या चिंताओं का बोझ, भय का बोझ, आगे पीछे ये होना है, ये हो गया, ये हो, कितने बोझ हैं उनको, और आपको है कोई बोझ? क्यों? फरिश्ता हमारा दूसरा लोक है, अव्यक्त बाप दादा इतने काम करते हैं, उनको कोई बोझ है? नहीं। बाबा कहते हैं मैंने शरीर ही इसलिए छोड़ा था कि शरीर में था तो था तो सारा शिव बाबा के अर्पण पर, स्नान करना पड़ता था, इधर से उधर जाना पड़ता था, शरीर को खांसी आ जाती थी, अब मैं मुक्त हूँ। और बेहद का जितने फॉरेन के सेंटर खुले हैं अव्यक्त बाबा ने खोले हैं कि नहीं, ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, कितनी प्रजा बाबा ने रची है। इसलिए आप भी, बाबा कहता आप मेरे बच्चे भी एक एक बच्चा फरिश्ता रूप धारण करो, क्योंकि आगे इतनी प्रजा को संदेश कैसे मिलेगा? कोई भाषण करके मिलेगा, कोई माइक से नहीं, आपके फरिश्ते रूप से मिलेगा। आप फरिश्ता रूप धारण करो, आप में बाप दिखेगी, किसने इसको ये बनाया है, तो डबल लाइट हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए बाबा कहता है डबल लाइट रहो, और ये हमारे पास ही शक्ति है कि सूक्ष्म वतन में जाकर फरिश्ता रूप का अभ्यास करना और यहाँ शरीर में फरिश्ता रूप में चलना, इसके लिए फिर ताली बजाओ, ये भी बाबा का आपके लिए चमत्कार है। तो इसलिए अगर आप लिस्ट बनाओगे तो हमारी जीवन ही बाबा ने चमत्कारी कर दी। तो ज्ञान सूर्य के चमत्कार एकाग्रता की शक्ति से, अब ये एकाग्रता की शक्ति क्या है भाई? आप जानते हैं कि स्कूल के अंदर हर एक को एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि एक कागज दे देते थे, एक शीशा लेंस दे देते थे कि सूर्य से ऐसे करो, रखे रहो, उसको आग लग जाती थी, सबको पता है ना? जिसको पता है जरा हाथ उठाओ, वेरी गुड, अच्छा सबको पता है। अब ये तो स्थूल सूर्य है और ये तो आग लगाने वाला सूर्य है, तो बाबा कहता है वैसे तो ये सूर्य भी चमक रोशनी देता ज्यादा है, आग तो कम लगती है, आग की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आग ही सब चीज को साफ करती है और खुद वैसी रहती है। और जितनी वस्तुएं हैं, चाहे आप पानी ले लो, चाहे हवा ले लो, वो अपना रूप बदल देती है, पर आग वैसी की वैसी रहेगी और किसी चीज का भी पूरा रूप बदल देगी। परंतु आग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रकाश, रोशनी। तो बाबा कहता है मैंने तो तुमको ज्ञान की रोशनी दी है, मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया है, अर्थात कि सूर्यमुखी का फूल आपने देखा होगा है? बाबा हमको पहले पहले सूर्यवंशी बनाता है। सूर्यवंशी कौन बनेंगे, कई पूछते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में क्या फर्क है। वो तो बाबा रोज ज्ञान देते हैं, इतना फर्क है, इतना फर्क है, इतना फर्क है कि बात ही अलग है। दुनिया का सूर्य भी जो है उसी की रोशनी से चंद्रमा चमकता है, वैसे तो पत्थर है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं, जो मेरा ज्ञान सुनकर धारण करके मेरी तरह मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं, अर्थात अपना जीवन अपने कल्याण के लिए भी लगाते हैं पर अपना कल्याण विश्व कल्याण के लिए लगाते हैं, विश्व कल्याण में अपना कल्याण आ ही जाता है, तो वो है सूर्यवंशी। और जो सो कल्याण करते वो भी अच्छा है, बाबा के बच्चे हैं, अपना तो कल्याण करते हैं, वो है चंद्रवंशी। वो आधारित रहते हैं किसी ना किसी पर। अब सूर्य रोशनी देगा तो चंद्रमा चमकेगा, आप देखेंगे कभी चंद्रमा लीक जैसा हो जाता है, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है एक दिन पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है, एक दिन अमावस्या का हो जाता है, कलह बदलता रहता है, सूर्य तो वैसा ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सूर्यमुखी के फूल कौन है, दुनिया में भी होते थे, हमारे घरों में बचपन में होते थे, आप लगा देते थे, जैसे जैसे सूर्य रूप दिशा बदलता था वो बदलते थे। आजकल नहीं है, आजकल तो सनफ्लावर की खेती होती है। अब आप खेती में सनफ्लावर लगा दोगे वो सब कट्ठे उगते हैं, कोई इधर कोई उधर, उनको तो उगने के लिए जगह ही नहीं रहती, वो क्या सूर्यमुखी बनेंगे हैं? जैसे लोग कहते हैं नहीं, सूर्य की तरफ मकान का मुंह होना चाहिए वास्तु के अनुसार। सतयुग में तो जिधर मर्जी मकान का रुख कर लो, यहाँ तो फ्लैट है, अब कहाँ कहाँ किस फ्लैट को अब सूर्य की तरफ करोगे, तो है ही कलयुग। कलयुग में सूर्यवंशी कहाँ से आए? परंतु बाबा ने हमको बताया है इस दुनिया में रहते हुए बाबा 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 ने क्या बताया है, अरे दिल में बाबा को रख लो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात के फर्क पड़ जाएगा, दिल में बाबा को रख लो, मेरे दिल में बाबा और बाबा के दिल में मैं। बाबा कहता आप तो रख सकते हैं, मेरे दिल में रहने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो तो बाबा ने कहा बच्चों को पता है कि मेरे दिल में कौन रह सकता है, और उसकी फर्स्ट स्टेप ये कि हम अपने दिल में बाबा को रखें। तो आप सबने अपने दिल में बाबा को रखा हुआ है ना, हाथ उठाइए, हमने रखा हुआ, वेरी गुड। परंतु थोड़ी सी उसमें मार्जिन है, वो क्या है, हम कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, कहते हैं सब, तो बोलिए मेरा तो शिव बाबा एक। अच्छा, इसके लिए ताली बजाइए, मेरा तो शिव बाबा एक। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन क्या है, वो भी तो आती है ना, दूसरा ना कोई। अब तो हम क्या करते हैं, मेरा शिव बाबा भी मेरा और दूसरे भी मेरे, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल भी मेरा माल, तो बताओ। तो इसलिए गड़बड़, तो एकाग्रता तो गई। तो हमारा टॉपिक क्या है, एकाग्रता की शक्ति से ज्ञान सूर्य के चमत्कारों को पाना। तो अब आप देखिए जब एकाग्रता हिली तो क्या होगा, बच्चे को कहते हैं ध्यान लगा के पढ़, अब डॉक्टर ने ऑपरेशन करना हो और एकाग्रता हिल जाए तो क्या करेगा बेचारा। और रोज सड़क पर जो कार चलाते ड्राइवर हैं उनको इतनी एकाग्रता रखनी पड़ती है कि मैं भी किसी को टक्कर ना मार दूं और दूसरा कोई मारने लगे उससे भी बचाव करूं, है ना। ये तो नहीं कह सकता कि तू शराबी है तो मेरे को मार जा, उसको बचाव भी कर, कितनी एकाग्रता है। इस जीवन में है ही एकाग्रता, गुलजार दादी ने स्लोगन दिया हुआ क्या, टेंशन रखोगे तो टेंशन नहीं रहेगा, बाबा का स्लोगन है। सावधानी हटी तो क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सब जानते हैं। तो इसलिए एकाग्रता तो चाहिए ही चाहिए, खास तौर पे कलयुग में। और जब आप पहाड़ी की चोटी पर जाते नीचे चाहे एकाग्रता कम हो, पर जितना जितना आप ऊंचे जाते हैं तो फिर तो आपका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। एक पैर खिसका तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रख, और गिरे तो चकनाचूर, तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब प्रश्न ये है एकाग्रता कैसे रखी जाए सहज रीति से, क्योंकि हमारे ज्ञान का पक्का स्लोगन ये है सहज और सदा। बीच बीच में हम सब कर लेते हैं, अब कभी जाके किसी में कोई खास कार्य करना हो, सब एड्रेस अच्छी तरह एक्टिवली आ जाएंगे वक्त पे, लेकिन सदा वही चीज हो सकती है जो सहज हो, जिसमें नेचुरल अटेंशन रहे। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी नेचुरल नेचर बनाओ। पहले तो हम इतने हिम्मत हार गए थे कि क्रोध छूट ही नहीं सकता, अहंकार छूट ही नहीं सकता, लोभ छूट ही नहीं सकता, मोह छूट ही नहीं सकता, बुरी दृष्टि छूट ही नहीं सकती। किसने छोड़ी है, क्योंकि सारे एक जैसे थे। तो बाबा ने कहा अरे ये तो चिमटी हुई बीमारी है, आपका ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल हम अनादि रूप में परम धाम में भी शुद्ध हैं, सतयुग में भी शुद्ध हैं, इसलिए त्रेता में भी शुद्ध हैं, संगम पर भी शुद्ध बन। तो बाबा ने कहा ज्यादा समय तो तुम प्योर हो, तो ताकत आ गई कि हम असली रूप ये तो नकली है, छूटेगा, था नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि एकाग्रता को हमें परमानेंट बनाना है। और जितने बाबा ने हमको साधन दिए हुए हैं सहज, वो एकाग्रता को ही परमानेंट बनाने के हैं। वो क्या है, बाबा ने कहा घर में रहते हो तो ट्रस्टी होके रहो, मेरे बच्चे होके रहो। तो क्या हुआ, आपका मैं नहीं रहा तो बाबा का बच्चा, बाबा का घर, बाबा के कपड़े धो रहे हैं, बाबा का सब बाबा का हो गया, तो आपकी एकाग्रता बाबा में लग गई। सेंटर में रहते हो तो भी बाबा ही बाबा, और भी इजी है। किसी की सेवा करते हो वो भी ईश्वरी सेवा करते हो। तो अगर हम अपने लाइफ को लौकिक से अलौकिक बना लेंगे तो क्या होगा, हमारी एकाग्रता आप ही हो जाएगी, और तो कुछ रहा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा दिल में बाबा रखो। तो ऐसे नहीं कि दिल में बाबा को बिठा के देखते रहना है, आप बाबा को दिल में रख के जिसका जो दिल में होगा उसका काम खुशी से करोगे, हैं? इसलिए बाबा कहता है कि सहज तरीका योग लगाने का, अर्थात मेरे से एकाग्र होने का क्या है, प्रेम। इसलिए बाबा कहता है मेरा तो शिव बाबा एक, शिव बाबा से अपने सारे संबंध जोड़ लो। बाबा ने क्या कहा, एक तो मैं अपना परिचय देता हूँ ताकि मेरे से संबंध जोड़ सको, सर्वव्यापी वाले तो जोड़ नहीं सकते। दूसरा मैं अपने से संबंध जुटवाता हूँ, संबंध से स्नेह पैदा होता है और स्नेह से नेचुरली आपका ध्यान उधर लग जाता है। जिसके साथ स्नेह होगा आपको दुनिया का भी पता नहीं होगा। हॉस्पिटल में आपका बेटा पड़ा है, आप उसको जा रहे हो देखने, रास्ते में क्या हो रहा है कि आपका ध्यान क्या है कि मैंने वहां जाना है, मोह है, स्नेह है। तो ये स्नेह ही एकाग्रता को लाता है। इसलिए बाबा कहता है कि देह सबसे बड़ी चीज है, जो गलती से मैं करके फिर मैं करवाती, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मैं तो आत्मा हूं। तो टोटल बाबा चेंज करा के संबंध जुटाता है। अब भाई जी एक गीत और लगा दीजिए, बाबा आपने कमाल कर दिया, सब लोग सुने बाबा का चमत्कार सुना, अब बाबा आपने कमाल कर दिया, सब दिल में रख के हमको पता है, पर गीत वाले ने रिवाइज करवाया।
Oh, Baba, I. دیا ہو بابا آپ نے کمال کر دیا ہمارا سارا جیون آپ نے خوشحال کر دیا ہاں خوشحال کر دیا ہو کمال کر دیا